हरे कृष्णा। तो कल हमने रामनवमी का महोत्सव मनाया, जिसमें हमने चर्चा की किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र आविर्भूत होते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, नवमी की तिथि, अभिजीत मुहूर्त, और उनके जन्म के विषय में रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वो नवमी की तिथि और कर्क राशि में आविर्भूत हुए थे। और दशमी जो आज है, आज के दिन आविर्भूत हुए भरत महाराज, और वो उनकी राशि थी मीन। और आज ही के दिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों भी आविर्भूत हुए कर्क राशि में। तो बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है हमारे आचार्यों ने की है कि जो ये तीन पटरानियां थीं महाराज दशरथ की, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और जैसे हमने कल चर्चा की थी कि अश्वमेध यज्ञ से जो वो पायसम खीर उत्पन्न हुई उसका आधा भाग कौशल्या को दिया गया और सुमित्रा को उसका एक आठवां भाग और दो बार दिया गया और कैकेयी को एक चौथाई। तो बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है कि ये सब के पीछे क्या रहस्य था, ये जो इतनी मात्रा में ये खीर पायसम का भाग दिया गया, क्या कारण था इसका। सबसे पहले आचार्य बताते हैं कि जो तीन रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीन गुणों के प्रतीक हैं। कौन से हैं तीन गुण? सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण। तो कौशल्या जो है वो प्रतीक है सत्व गुण की, सुमित्रा देवी वो प्रतीक है रजोगुण, और कैकेयी प्रतीक है तमोगुण। और इन तीन गुणों से इस भौतिक संसार में चार पुरुषार्थ पाए जाते हैं। तो चार पुरुषार्थ कौन से हैं, कोई जानता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें चार पुरुषार्थ कहा गया है। तो तीन गुणों के वजह से इस संसार में चार पुरुषार्थों की उत्पत्ति होती है। तो यह बहुत सुंदर तुलना की गई है कि कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों मिलाकर उन्होंने चार पुत्रों की उत्पत्ति की। तो तीन रानियां तीन गुणों के प्रतीक, और जो चार पुत्र हुए वो ये चार पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी वो प्रतीक हैं धर्म के, लक्ष्मण प्रतीक हैं अर्थ के, शत्रुघ्न काम के, और भरत मोक्ष के। तो इसे समझने के लिए थोड़ा आपको ध्यान से सुनना होगा कि ये चार पुरुषार्थ और जो चार पुत्र हुए इन तीन रानियों के, ये किस प्रकार से इनके प्रतीक हैं। अब देखिए, ये चारों भाइयों में इनमें से दो दो का गुट बनाना होगा कि जोड़ा बनाना होगा। तो एक जोड़ा था राम और लक्ष्मण का, और एक जोड़ा था भरत और शत्रुघ्न का। तो दोनों, ये जो दो जोड़े थे, हर समय राम और लक्ष्मण एक साथ रहा करते थे और उनका प्रेम बहुत विख्यात था। राम और लक्ष्मण का, और भरत और शत्रुघ्न ये जो एक जोड़ा था इनका प्रेम बहुत विख्यात था, ये आपस में रहते थे एक साथ ज्यादा। हालांकि चारों में प्रेम तो था ही, परंतु ज्यादा जैसे एक परिवार में पाया जाता है कि कुछ एक दो भाई थोड़ा ज्यादा निकट से संग करते हैं एक दूसरे का, तो वैसे ही राम और लक्ष्मण, और इनमें प्रेम इतना था कि बचपन की बात है जब लक्ष्मण रोया करते थे, बस अब पालने में थे लक्ष्मण, और जब वो रोना प्रारंभ करते थे तो सुमित्रा को उठाकर लक्ष्मण जी को कौशल्या के कक्ष में ले जाना पड़ता था, और जब कौशल्या के कक्ष में जाकर रामचंद्र जी का दर्शन कर लेते थे लक्ष्मण जी तो शांत हो जाते थे। तो लक्ष्मण जी राम के प्रति बहुत आसक्त रहते थे हर समय, और राम भी। यहां तक कहा गया है कि प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण के प्रति इतना आसक्त रहते थे कि वो लक्ष्मण को अपने देह से ज्यादा प्रेम करते थे। और वो कैसे कि लक्ष्मण को वो अपना दाहिना हाथ मानते थे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड, तो लक्ष्मण को अपना दक्षिण हस्त दाहिना हाथ मानते थे वो, और खाने के लिए हमें दाहिना हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने देह से ज्यादा अधिक प्रेम करते थे, तो वो कुछ खाते नहीं थे जब तक लक्ष्मण निकट में बगल में बैठकर नहीं खाता उनके साथ। तो क्या कारण देते कि बिना मेरे दाहिने हाथ के मैं खाना कैसे प्रारंभ कर सकता हूं, यदि मेरा दाहिना हाथ ही नहीं है तो कैसे खाऊंगा मैं। तो दाहिने हाथ कौन थे? लक्ष्मण। और रात को जब सोने का समय होता तो यदि उन्हें अकेले बिस्तर पर लेटाया जाता तो नींद नहीं आती उनको, करवट बदलते हुए रहते। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार नींद लेने के लिए आपको सांस की आवश्यकता है। तो वो कहते कि लक्ष्मण ही मेरी सांस है, तो जब तक लक्ष्मण नहीं आएंगे तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो इतना प्रेम था राम और लक्ष्मण के बीच में। और जो हमने ये चर्चा की कि ये चारों प्रतीक थे धर्म अर्थ काम मोक्ष के, तो जो अर्थ और काम है वो धर्म और मोक्ष के बीच में होने चाहिए, और इसीलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न वो राम और भरत के बीच में रहते थे। तो राम प्रतीक थे धर्म के, भरत प्रतीक थे मोक्ष के, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों के बीच में अर्थ और काम, क्योंकि यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं कि यदि अर्थ और काम को एक साथ छोड़ दिया जाए इस संसार में तब तो फिर सब अधोगति की तरफ जाएंगे। अर्थ तो आप जानते हैं, पैसा। तो यदि अर्थ और काम ये एक साथ आ जाए, कामना इस संसार में अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग की कामना, तो कामना इंद्रिय भोग की और अर्थ, जैसे बहुत से लोग इंद्रिय भोग में नहीं लग रहे क्योंकि अर्थ नहीं है। तो कहा गया है कि उसे वैरागी नहीं कहते जिसके पास कोई सुविधा या साधन नहीं है इंद्रिय भोग करने का, इसलिए वैराग्य को अपना लिया, भाई वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई अर्थ नहीं है तो कोई इंद्रिय भोग नहीं मिल रहा तो चलो वैराग्य को अपना लेते हैं। जैसे भारत में कहा जाए यदि कोई नौकरी ना मिले तो फौज में भर्ती हो जाओ। तो कई लोग दिखते हैं कि भाई खाने के लिए बहुत साधारण सा कुछ खा रहे हैं, जैसे कोई विरक्त खाता है साधारण सा, पहनने के लिए कुछ साधारण सा है, रहने के लिए साधारण सा, कोई साधन है, वो किस लिए? क्योंकि अर्थ नहीं। जैसे ही अर्थ दे दिया जाए तब फिर परमार्थ तो साइड में चला जाता है, और फिर जो इच्छा है भोगने की वो सारी इच्छा और प्रबल हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये कामोपभोग आयाता त्रास चिंता मतिर नृणाम। अर्थस्य साधने सिद्धे, जब कोई व्यक्ति केवल अर्थ के लिए, केवल धन एकत्रित करने के लिए इस संसार में जीवन यापन करता है तो साधने, उसको साधन करने में इतनी तकलीफ होती है उस अर्थ को साधने के लिए, कमाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि उस अर्थ को कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता इस संसार में। फिर यदि वो अर्थ आ भी जाए तो इस संसार में उत्कर्षे, उसे फिर बढ़ाने की इच्छा होती है कि अब अर्थ तो आ गया, ये जाए नहीं तो इसे बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए लोग कितना परिश्रम करते हैं, जो साध लिया अर्थ उसे उत्कर्षे बढ़ाने के लिए। और फिर रक्षणे, यदि उत्कर्ष नहीं हो रहा तो कम से कम उसकी रक्षा तो करें, उसे बैंक में ठीक ठीक से संभाल के रखें, या पहले क्या करते थे, जमीन में गाड़ कर रखते थे, और कई बार वो व्यक्ति भी आगे चलकर भस्म हो गया जलकर, परंतु उसका जो धन है वो जमीन में ही गड़ा रह गया। इसलिए नीति में कहा है जब व्यक्ति मरण शैया में रहता है तो पूछता है अपने धन के विषय में, तो कहा गया धनानी च भूमौ, वो जो धन है वो केवल भूमि में ही रह जाएगा और जाना पड़ेगा तुम्हें अकेले। तो रक्षणे और उसके पश्चात व्यये, उसका जब व्यय करना होता है उस धन का, उस अर्थ का, उसको जब खर्चा करना होता है तब तो फिर हृदय में कितनी ठेस पहुंचती है। एक एक कौड़ी जब खर्चा होती है तो ऐसा लगता है कि एक एक बाल निकाला जा रहा है अपने शरीर से, इतनी तकलीफ होती है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो अर्थ है इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के व्यसन, बुरी आदतें, और कली, मूर्तिमान कली इस अर्थ में विराजमान है। इसलिए यदि उस अर्थ को भगवान की सेवा में नहीं उपयोग में लाया गया तो वो जो अर्थ है कली के समान हर समय हमारे जीवन पर मंडराता रहेगा। तो अर्थ और काम ये जब एक साथ आते हैं तो फिर व्यक्ति की अधोगति होती है। तो इसीलिए ये चार पुरुषार्थों के विषय में कहा गया है कि अर्थ और ऐश्वर्य जिनके प्रतीक थे लक्ष्मण, और वो ऐश्वर्य लक्ष्मण का क्या था, वो अर्थ, वो ऐश्वर्य लक्ष्मण का था कि वो हर समय प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में, तो उसे संस्कृत में कहा गया है कैंकर्ता। कैंकर्य ये बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत में, किंकर जिसे कहते हैं, कि मैं भगवान का किंकर हूं, भक्त कहते हैं कि नहीं। किंकर का अर्थ होता है किम करोति, कि हर समय हाथ जोड़े हुए भगवान के सामने वो किंकर पूछता है कि मैं क्या करूं आपकी सेवा के लिए। तो लक्ष्मण उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में हर समय रत रहते थे। जब वो वनवास में थे तो पूरे 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण ने एक झपकी नींद की नहीं ली। इस प्रकार की सेवा में रत रहते थे लक्ष्मण हर समय। इसीलिए जब लक्ष्मण को अर्थ या ऐश्वर्य का प्रतीक कहा गया है तो वो है रामचंद्र जी की सेवा का ऐश्वर्य, वो अर्थ, वो कमा रहे हैं, वो धन, सेवा का धन कमा रहे हैं लक्ष्मण जी। तो इसीलिए वो उस अर्थ के प्रतीक हैं। और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न को किसका प्रतीक हमने कहा था, काम का प्रतीक। तो शत्रुघ्न के अंदर वो कौन सी कामना है, वो किस प्रकार का काम है उनके अंदर। जैसे इस भौतिक संसार का जो काम है उसे कहा गया है दुरासदम काम भोगम, परंतु शत्रुघ्न के अंदर जो कामना है वो कामना है रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि रामचंद्र जी के भक्तों की सेवा करने की कामना। और वो भक्त कौन है? भरत महाराज। तो शत्रुघ्न हर समय भरत महाराज की सेवा में लगे रहते थे, तो लक्ष्मण सेवा में लगे रहते थे उन रामचंद्र जी जिन्हें भागवत कहा गया है। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होते हैं व्यक्ति भागवत जो भक्त होते हैं, और एक है परम पुरुष भागवत जो भगवान है। तो जो भगवान भागवत हैं उनकी सेवा में लक्ष्मण लगे रहते थे, और शत्रुघ्न उनकी एकमात्र कामना रहती थी हर समय जो भागवत उनके भक्त हैं उनकी सेवा में लगे रहना। तो ये है शत्रुघ्न। और भरत महाराज वो प्रतीक कहे गए हैं मोक्ष के, तो वो कौन सा मोक्ष है जिसके पीछे भरत महाराज अपना जीवन जी रहे हैं। जब कैकेयी ने पूरी योजना की कि किस प्रकार से मेरा पुत्र भरत इसे राज्य मिलना चाहिए, तो भरत महाराज वो तत्पर थे उस राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कैकेयी तत्पर थी राज्य दिलाने के लिए, और भरत महाराज तत्पर थे उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो वो जो मोक्ष है वो भरत महाराज उनका प्रतीक है कि वो केवल प्रभु रामचंद्र जी को राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं और हर समय उस राजगद्दी से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो मोक्ष के प्रतीक हैं। और धर्म वो है प्रभु श्री रामचंद्र जी। जितने भी धर्म, मानव धर्म या सामाजिक धर्म जो हमें सीखना है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र से हम सीख सकते हैं। इसीलिए जो वो खीर पायसम उसका विभाजन जब किया गया तो आधा भाग दिया गया कौशल्या को, तो वो दर्शाता है कि हमारे जीवन में आधा भाग होना चाहिए धर्म का, जिससे रामचंद्र जी की उत्पत्ति हुई। तो जीवन का आधा भाग होना चाहिए, जाना चाहिए धर्म कार्य में करने के लिए, और एक चौथाई जिनसे उत्पन्न हुए लक्ष्मण वो जाना चाहिए अर्थ के लिए। तो आधा और एक चौथाई कितना हो गया? तीन चौथाई। तो तीन चौथाई जीवन का भाग जाना चाहिए धर्म और अर्थ, और वो अर्थ जो धर्म के कार्यों में लगाएं, ये उसका प्रतीक है। और बाकी जो उस एक भाग का आठवां भाग हुआ वो दो हो गया अब आठवें भाग, तो वो प्रतीक है हमारे जीवन में कामना होनी चाहिए मोक्ष की। तो जीवन का विभाजन ये चार जो पुत्र हुए कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के, जिनको उस प्रकार से विभाजित किया गया वो पायसम देकर और उनकी उत्पत्ति उनसे हुई, ये उनके प्रतीक हैं। तो जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष इसे दैव तरीके से दिव्य तरीके से कैसे समझा जाए, यहां पर ये चार बता रहे हैं। तो जब कुछ दिन बीते 10-12 दिन, तो 13 दिन बीतने के पश्चात अब वशिष्ठ मुनि उन्होंने नामकरण संस्कार आयोजित किया इन चारों पुत्रों के लिए। और बहुत ही सुंदर हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो नामकरण हुआ इन चारों का, तो इनके पीछे क्या अर्थ था, उद्देश्य था। हालांकि भगवान को कौन नाम दे सकता है, वो तो अपने गुणों के द्वारा नाम लेते हैं, और इस संसार में चाहे नाम भी दे दो हमें, परंतु वो जो गुण हैं वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। परंतु भगवान को राम क्यों कहा गया है? क्योंकि हर समय वो आनंद स्वरूप हैं, हर समय वो रमण करते हैं आनंद में और वो देते हैं आनंद जो भी उनके संपर्क में आते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि जब कोई बद्ध जीवात्मा ये राम शब्द उच्चारण करता है अपने मुखार से, तो मुखारविंद से जब प्रारंभ करता है बोलना राम शब्द, तो उसका मुंह खुलना, रा बोलने के लिए मुंह खुलना चाहिए, तो जैसे ही मुंह खुलता है रा बोलने के लिए, तो जितने भी पाप हैं अंदर से वो खुले मुख से बाहर आ जाते हैं। और वो जो म बोलना होता है राम में, तो मुंह बंद करना होता है म बोलने के लिए, तो जैसे ही व्यक्ति मुंह बंद करता है राम शब्द बोलने के लिए, तो जितने भी पाप बाहर आ गए हैं अब वो अंदर नहीं जा सकते। तो यदि किसी व्यक्ति को निरंतर रूप से अपने पाप बाहर निकालने हैं और निरंतर रूप से उसे ये देखना है कि पाप अंदर न जाए, तो उसे क्या करना होगा? राम 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 बोलते जाए बोलते जाए। तो वशिष्ठ मुनि उन्होंने ये नामकरण संस्कार प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले कौशल्या के पुत्र उनको नाम दिया गया राम, और सुमित्रा के जो दो पुत्र है उनको क्या नाम दिया गया? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के पुत्र भरत हुए। तो राम के विषय में कहा गया है, ज्येष्ठम रामम महात्मनम, कि क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी वो सबसे ज्येष्ठ थे, तो ज्येष्ठम रामम महात्मनम, कि क्योंकि वो एक मनुष्य रूप में आए और उन्होंने मनुष्य धर्म सिखाया, तो मनुष्य शरीर में, सब मनुष्यों के शरीर में आत्मा होती है, परंतु जब प्रभु आते हैं एक मनुष्य रूप में तो उनके अंदर साधारण आत्मा नहीं होता, तो उनका आत्मा क्या होगा? महाआत्मा। तो इसीलिए ज्येष्ठ राम महाआत्मा कहा गया है उन्हें, यह उनके नाम का अर्थ एक हुआ। और भरत महाराज, इनको ये जो नाम दिया गया इसका अर्थ बताते हैं, भार वहती इति भरत, जो भार ढोते हैं उनको भरत कहते हैं। और वो कौन सा भार ढो रहे थे भरत महाराज? जब कैकेयी ने और रामचंद्र जी ने, दोनों ने, सभी ने कहा भरत को कि मैं 14 वर्ष जा रहा हूं, राजगद्दी लो संभालो, तो उनके लिए वो राजगद्दी संभालना बहुत बड़ा भार था। इतना बड़ा भार वो बिना रामचंद्र जी के कैसे उठाते? तो इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम में अपनी कुटिया बनाई और प्रभु रामचंद्र जी की पादुका रखी राजगद्दी के ऊपर, और उस प्रकार से उन्होंने वो राज्य का जो भार है उसे संभाला। तो इसलिए उनका नाम है भार वहति इति भरत। और लक्ष्मण, लक्ष्मण ये नाम का अर्थ हुआ लक्ष्मी संपन्न इति लक्ष्मण, जो लक्ष्मी से संपन्न रहते हैं हर समय, वो है लक्ष्मण। और वो कौन सी लक्ष्मी है? हमने उसके विषय में चर्चा की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा की लक्ष्मी। जैसे आध्यात्मिक संसार में भी वैकुंठ धाम में जो लक्ष्मियां हैं वो हर समय सेवा में रत रहती हैं विष्णु की, नारायण की। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वैकुंठ धाम में कोई कचरा या कोई कूड़ा नहीं होता, एकदम स्वच्छ सब कुछ होता है वहां, फिर भी वहां पर लक्ष्मियां हर समय झाड़ू मारती रहती, एक कण कचरा का नहीं वहां पर, फिर भी लक्ष्मियां झाड़ू मारती रहती हैं। कुछ सेवा चाहिए। और गोलोक वृंदावन में तो कहा गया है कि जो मंजरियां हैं उनके पास झाड़ू भी नहीं रहती, क्योंकि वैकुंठ धाम तो ऐश्वर्यशाली धाम है, तो वहां पर यह सब कुछ उपलब्ध है, परंतु गोलोक वृंदावन में वहां पर ये जो गोपियां और मंजरियां ये कैसे झाड़ू लगाती हैं, अपने केश से, अपने केश से वो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए झाड़ू लगाती है। तो जिस प्रकार से लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, ब्रह्मा जी कहे हैं ब्रह्म संहिता में कि केवल एक लक्ष्मी नहीं बल्कि सहस्त्र लक्ष्मियां वो सेवा में रत रहती हैं हर समय। लक्ष्मी पाद सेवनम करती रहती हैं, अन्य जितनी भी और लक्ष्मियां हैं वो अन्य सेवाओं में रत रहती हैं। तो उसी प्रकार से लक्ष्मण उन लक्ष्मियों के प्रतीक हैं जो हर समय भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का अर्थ तो बहुत सरल है समझना, जो शत्रु का हनन करे वो है शत्रुघ्न। परंतु यदि रामायण में हम पढ़ेंगे तो शत्रुघ्न ने केवल एक ही असुर का वध किया, और वो कौन सा असुर था? लवणासुर, मथुरा में एक ही असुर था। तो क्यों फिर शत्रुघ्न को शत्रुघ्न नाम दिया गया जब केवल एक ही असुर का वध किया, एक ही शत्रु का वध किया उन्होंने? तो आचार्य बताते हैं कि वो कौन सा शत्रु है जिसका वध किया था शत्रुघ्न ने, जिसके वजह से उनको ये नाम मिला है शत्रुघ्न। वो शत्रु है हमारे हृदय का शत्रु, काम। उस शत्रु का वध करते हैं शत्रुघ्न। जैसे शत्रुघ्न को अनुमति थी कि वो भी जा सकते थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ, भरत तो नहीं थे वहां पर, तो लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न भी जा सकते थे वन में। परंतु शत्रुघ्न ने सोचा कि क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं डायरेक्ट सेवा करने के लिए प्रभु रामचंद्र जी की, इतने वो नम्र थे, और इसीलिए मैं सेवा करूंगा भरत महाराज की, जो सेवा में हर समय लगे रहेंगे प्रभु रामचंद्र जी की। तो इसीलिए वो रुक गए, और इसीलिए उन्हें शत्रुघ्न कहा गया है कि ये नम्रता की वजह से उन्होंने अपने हृदय के जितने भी शत्रु हैं उनका हनन किया। तो यदि हमें भी भगवान की सेवा में लगना है और सारे शत्रुओं का वध करना है जो सेवा में अवरोध डाल रहे हैं, तो वो होगा जिस प्रकार से शत्रुघ्न ने नम्रता अपनाई उस नम्रता से। तो ये उनके नाम का अर्थ वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इन चारों को जब नाम दिया गया, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत महाराज, उसके पश्चात विश्वामित्र मुनि आए, और बहुत ही सुंदर वर्णन है। विश्वामित्र मुनि जब प्रवेश करते हैं तो दशरथ महाराज, उनके अंदर दो प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वो थोड़ा डर जाते हैं और उसके साथ साथ अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि विश्वामित्र मुनि इनके जन्म के पश्चात अब यहां पे उपस्थित हुए हैं। हालांकि बहुत से वर्ष बीत गए थे, अब वो 15-16 वर्ष के हो चुके थे ये चारों भाई, तब आए थे विश्वामित्र मुनि। तो ये उस समय आए विश्वामित्र मुनि अयोध्या में, जब दशरथ महाराज एक दिन बैठकर सोच रहे थे कि अभी राम 16 वर्ष के हो गए हैं, तो इनके विवाह के विषय में मुझे अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए सोचना। तो जैसे ही दशरथ महाराज अब सोच रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के विषय में, तो विश्वामित्र मुनि वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ही आगे चलकर रामचंद्र जी का विवाह लगाएंगे सीता देवी से। तो दशरथ महाराज उस समय तो ये संकेत समझ नहीं पाए कि विश्वामित्र मुनि ही वो जो आए हैं अब ले जाने के लिए, मैं जो सोच रहा हूं उसे संपन्न करने के लिए ही आए हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उस समय। तो क्योंकि विश्वामित्र मुनि पहले बहुत विख्यात थे अपने गुस्से के कारण। उन्होंने वो रंभा के ऊपर इतना क्रोध किया था, उसे पत्थर बना दिया था। उससे पहले मेनका की सुंदरता के वशीभूत हो गए थे वो। तो इसीलिए उन्हें उस समय नाम मिला था विश्व अमित्र कि जो विश्व के अमित्र हैं, अमित्र क्या होता है, जो शत्रु है तो इसीलिए उस समय उन्हें व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से यह नाम दिया गया था, विश्व के जो अमित्र हैं। परंतु वो सब घटनाओं से पार होने के पश्चात, वो सब अनुभव प्राप्त करने के पश्चात, अब वो वास्तविक रूप में विश्व के मित्र बने थे। और इसीलिए वो बताएंगे कि वो कैसे विश्व के मित्र बने, क्योंकि एकमात्र लालसा उनकी थी प्रभु श्री रामचंद्र जी का संग करना, उनकी सेवा करना। तो इसीलिए वो वहां पर आए। और जैसे ही विश्वामित्र मुनि वहां पर आते हैं तो दशरथ महाराज, देखिए दशरथ महाराज किस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। ऐसा नहीं आजकल आ गए कोई लोग तो हाय, बम्बई में अक्सर कभी जब लोग मिलते हैं तो आपस में हाय कहते हैं। अब हिंदी में हाय का क्या अर्थ होता है हम जानते हैं, हाय हाय। तो ऐसा नहीं था कि दशरथ महाराज उस प्रकार से उनको आमंत्रित कर रहे थे अपने दरबार में। किस प्रकार से दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि को आमंत्रित किया। सबसे पहले दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं, अहिष्टम पुनर्जयाय, कि ये बताइए कि पुनर्जन्म के ऊपर विजय प्राप्त करने में आप कितने सफल रहे हैं अब तक। यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, सगे संबंधी से या किसी मित्र से, तो कभी हुआ कि हमने इस प्रकार का प्रश्न पूछा। कोई व्यक्ति से हम मिल रहे हैं बहुत समय पश्चात, तो उसे ये पूछे हम कि पुनर्जन्म के ऊपर कितना विजय प्राप्त किया है आपने। या किसी का बर्थडे पार्टी है, उसमें जाकर ये आप पूछिए कि पुनर्जन्म के विषय में क्या फिर से आपको जन्म लेना है, कि उसके विषय में क्या कर रहे हैं आप, या केवल बर्थडे मना रहे हैं, सालों साल केवल बर्थडे मना रहे हैं और सभी गुणगान करते हैं कि कितना ये व्यक्ति देखिए अभी 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का बड़ा बड़ा ये व्यक्ति बन रहा है, और उसका गुणगान होता है कि ये पैदा हुआ है, जन्म लिया है। अरे तो जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी ये सब भी जन्म लेते हैं, परंतु यहां पर दशरथ महाराज पूछ रहे हैं कि जन्म लेने का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पुनर्जन्म जयाय, कि फिर से जन्म न लेना इस संसार में, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, इसीलिए यहां पर जन्म दिया जाता है हमें, विशेष रूप से मनुष्य जन्म। और वो विश्वामित्र मुनि को इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे थे क्योंकि विश्वामित्र मुनि जो एक विरक्त साधु, तो साधुओं को तो यही प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि वो लगे हुए हैं दिन रात पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे अलग अलग लोगों से हम अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, कोई व्यापारी आ जाए तो उसको क्या पूछेंगे, कैसा चल रहा है आपका व्यापार। कोई विद्यार्थी आए तो उसको पूछेंगे पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई शादीशुदा आ जाए तो पूछेंगे कैसी हो रही है, शादी ठीक चल रही है कि नहीं। और जो कोई रिटायर हो गया तो उसे ये नहीं पूछेंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, भाई अब वानप्रस्थ की क्या तैयारी हो रही है, और सब उस विषय में प्रश्न पूछेंगे। तो अलग अलग व्यक्तियों को प्रश्न पूछा जाता है उनके स्तर के अनुसार। जैसे प्रभुपाद जी एक कथा बताया करते थे कि एक गांव में एक साधु गए और अपने शिष्यों के साथ, तो वहां पर जैसे ही साधु गए तो पूरा गांव वहां पर आया उनका दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए। तो सबसे पहले जो उस राज्य का युवराज था, राजा का पुत्र, वो आया। तो राजा का पुत्र आया और आशीर्वाद मांग रहा था इनसे, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया इस युवराज को, मां मरह, कि तुम मरना मत, जीते रहो, ये आशीर्वाद दिया। तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, जीते रहो, वो चला गया। उसके पश्चात एक कसाई आया, जानवरों को मारने वाला। तो उस कसाई को जब साधु ने देखा तो कसाई को क्या आशीर्वाद दिया, कि तुम न तो जियो, तुम न मरो, मां जीव मां मरह। ये कैसा आशीर्वाद हुआ, या तो कोई जिएगा या तो कोई मरेगा, दोनों कैसे हो सकता है। तो उनके जो शिष्य थे वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे गुरु महाराज किस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तीसरा व्यक्ति एक ब्रह्मचारी आया, तो ब्रह्मचारी को जब देखा तो साधु महात्मा ने आशीर्वाद दिया, तुरंत तुम मर जाओ। तो ब्रह्मचारी बहुत खुश हुआ, चला गया ये आशीर्वाद प्राप्त कर। और फिर एक भगवान का शुद्ध भक्त आए वहां पर, और वो आशीर्वाद के लिए जब पूछे तो उनको आशीर्वाद दिया, जीवो वा मरो वा, कि तुम या तो जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सभी जाने के पश्चात अब शिष्य पूछते हैं गुरुजी से कि बताइए बताइए क्या अर्थ क्या हुआ, क्या आपका प्रयोजन था, ये अलग अलग आशीर्वाद आपने दिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो युवराज आया था तो मैंने देखा कि जो युवराज है ये केवल इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, क्योंकि इसके पास बहुत अर्थ है तो इसलिए केवल इंद्रिय भोग में लगा है, और जीवन के अंत के पश्चात इसको सब भुगतना पड़ेगा जो भी इंद्रिय भोग इसने किया, सारा परिणाम इसे नरक जाना होगा उसके वजह से। तो इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया, तुम मरो मत, जीते रहो, क्योंकि मरने के पश्चात यमदूत तैयार है तुम्हारे लिए। और जब वो कसाई आया तो उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो केवल पशु की हत्या और खून और इसी में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो जीते जी ही वो नरक का जीवन जी रहा है, और मरने के बाद तो जाना ही उसे नरक। तो इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम न तो जियो न मरो, क्योंकि दोनों स्थिति नरकीय स्थिति है तुम्हारी। और वो जो ब्रह्मचारी आया वो इतनी तपस्या में लगा है, कठोर तपस्या कर रहा है, और मरने के पश्चात तो उसे उसका अच्छा परिणाम, अच्छा फल मिलने वाला है, इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया, तुरंत तुम अभी मर जाओ, ताकि जितनी भी तुमने तपस्या की है उसका तुम्हें सही परिणाम मिल जाए। परंतु वो जो शुद्ध भक्त आया अंत में, क्योंकि वो हर समय भगवान की भक्ति में ही लगा रहेगा तो उसे इस संसार से कोई आसक्ति नहीं, इसलिए चाहे वो इस संसार में रहे या चाहे वो न रहे, वो भक्ति हर समय करता रहेगा, इसलिए उसे आशीर्वाद दिया, जियो वा मरो वा, चाहे तुम जियो या चाहे तुम मरो, तुम हर समय भगवान की भक्ति में ही लगे रहोगे। तो उसी प्रकार से यहां पर दशरथ महाराज अब विश्वामित्र मुनि से पूछ रहे हैं, अहिष्टम पुनर्जयाया, पुनर्जन्म जयाया, कि पुनर्जन्म के ऊपर कितना विजय प्राप्त आपने किया ये बताइए। तो दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि आपका आगमन हमारे राज्य में हुआ है और आपने ये जो दिव्य संग मुझे दिया है ये इस प्रकार से है जैसे किसी व्यक्ति ने विष खा लिया हो और उसे अमृत प्राप्त हो जाए, आपका संग उस प्रकार से है आज। फिर वो आगे कहते हैं कि आपका संग उस प्रकार से है जैसे किसी देश में अकाल पड़ा हो, अनावृष्टि हो, और एक दिन अतिवृष्टि हो जाए उस देश में, तो आपका संग उस अतिवृष्टि के समान है। फिर वो कहते हैं कि आपका संग उस प्रकार से है जैसे कोई पिता जो पुत्रहीन है और उसे पुत्र प्राप्त हो जाए, तो आपका संग उस प्रकार से है। आपका संग उस प्रकार से है जैसे कोई निर्धन व्यक्ति को कोई खजाना मिल जाए, वैसे आज आप मुझे मिले हैं। परंतु वो ये नहीं जानते थे कि उनका जो असली खजाना है वो ले जाने आए हैं विश्वामित्र मुनि। तो इस प्रकार से वो विश्वामित्र मुनि का गुणगान कर रहे थे और विश्वामित्र मुनि इतने प्रसन्न हुए दशरथ महाराज का इस गुणगान सुनते हुए। तो विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को कहते हैं कि वास्तविक रूप में आपने जो कथन किया है वो इतना मधुर है और आपका उदाहरण सबको पालन करना चाहिए कि जो वाणी है इस वाणी का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो वो दशरथ महाराज का गुणगान करते हुए कहते हैं कि वाणी का उपयोग तीन तरीके से किया जाना चाहिए। एक तो वाणी मधुर होनी चाहिए, दूसरा इस वाणी को जब हम कुछ कहें जिह्वा से कुछ उच्चारण करें तो जो भी शब्द निकले उनका कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ कार्य होना चाहिए, उनका पर्पज होना चाहिए। और तीसरा वाणी जो है वो नम्रता से भरी हुई होनी चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं, अब देखिए कई बार देखते हैं संसार में ना तो वाणी मधुर होती है लोगों की, ना उसके अंदर कोई तथ्य होता है, और नम्रता ये किस चिड़िया का नाम है। कई बार हम भी क्योंकि भक्त के समुदाय में रहते हैं तो नम्रता के विषय में इतना सुने हैं कि भक्त को नम्र होना चाहिए और वाणी भी नम्र होनी चाहिए। तो मैं एक बार दो भक्तों का वार्तालाप सुन रहा था, तो वार्तालाप में कहते हैं एक भक्त दूसरे से कहते हैं कि मैं इतना पतित हूं, इतना मैं पतित हूं कि मेरी तुलना नाली के कीड़े से भी की जाए तो वो भी उसके अंदर कुछ गुण पाए जाएंगे, नाली के कीड़े से भी अधम हूं मैं। तो दूसरे भक्त कहते हैं अरे मैं मेरे विषय में क्या कहूं, आपने तो कहा कि आप नाली के कीड़े के समान जो कुछ आप नम्रता से कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरी दशा तो ऐसी है कि उस नाली के अंदर यदि किसी ने विष्ठा डाल दी तो उस नाली के अंदर की विष्ठा का कीड़ा हूं मैं। अब बताइए आप क्या कहेंगे अब इसके आगे। तो ये भक्त ने कहा कि मैं उस नाली के अंदर के विष्ठा के कीड़े की विष्ठा का कीड़ा हूं। तब तो फिर उसने दंडवत कर दिया, महाराज इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इसके नीचे नहीं जा सकता। तो नम्रता की वाणी होनी चाहिए परंतु उसके साथ वो भावना भी होनी चाहिए कि हां कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिच्छे न, तो उस प्रकार का जीवन भी होना चाहिए उसके पीछे पीछे। तो यहां विश्वामित्र मुनि वो बता रहे हैं कि महाराज दशरथ आपकी वाणी इतनी मधुर है और उसके अंदर इतना तथ्य मैं पा रहा हूं और इतनी नम्रता से आप पेश आ रहे हैं। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि अब बताने जा रहे हैं कि उनका प्रयोजन क्या है आने का। तो आचार्य यहां पर विश्वामित्र मुनि का प्रयोजन बताने से पहले ये प्रश्न पूछते हैं कि ये जो पहला कांड है रामायण का, कौन सा है ये पहला कांड? बाल कांड। तो इस बाल कांड को बाल कांड क्यों कहा गया है? कोई व्यक्ति कह सकता है? हम कहेंगे क्योंकि रामचंद्र जी अब बालक के रूप में यहां पर अवतीर्ण हुए हैं तो इसीलिए बाल राम को उनके नाम के अनुसार बाल कांड कहा गया है इस पहले कांड को। परंतु रामायण में कहीं पर भी रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन नहीं है, कहीं पर भी। जैसे कृष्ण की बाल लीला का वर्णन भागवत में कितना है, अध्याय के बाद अध्याय कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। परंतु यदि रामचंद्र जी के विषय में हम रामायण में पढ़ेंगे तो रामायण में कहीं पर भी रामचंद्र जी की बाल लीलाओं के विषय में नहीं कहा गया। तो फिर इस पहले कांड को बाल कांड क्यों कहा गया है? तो आचार्य बताते हैं ये पहले कांड को बाल कांड कहा गया है विश्वामित्र मुनि के पीछे। देखिए अब विश्वामित्र मुनि जो इतने बुजुर्ग हैं उनको लेकर रामायण के पहले कांड को बाल कांड कहा गया है। और वो इसलिए क्योंकि बताया गया है कि विश्वामित्र मुनि उनके अंदर ब्रह्म विद्या, अर्थ पंचक का ज्ञान, बल अति बल, पर विद्या और अपर विद्या, ये सब विद्याओं के वो एक प्रकार के स्रोत और उनके अंदर समाये हुए थे सारी विद्याएं। परंतु विश्वामित्र मुनि अब आ रहे हैं रामचंद्र जी के समक्ष, तो रामचंद्र जी के समक्ष उनको आना है ये सभी विद्याओं को छोड़ते हुए, ये सभी विद्याओं का त्याग करते हुए, पर अपर विद्या, अर्थ पंचक, बल अति बल, ये सब का त्याग करते हुए जैसे एक बालक आता है अपनी माता के सामने। एक जो छोटा बालक है वो अपनी माता के सामने कैसे आता है कि मैं असहाय हूं, केवल आप ही माते मेरा सहारा हो। तो जैसे एक बालक माता के सामने आता है उसी प्रकार से अब विश्वामित्र मुनि यहां पर रामचंद्र जी के समक्ष आ रहे हैं एक बाल्य के समान। और इसीलिए यहां पर विश्वामित्र मुनि के ये सारे गुण नहीं कहे गए कि उनके अंदर ब्रह्म विद्या है, पर अपर विद्या है, अर्थ पंचक का ज्ञान है, ये सब कुछ नहीं कहा गया। अब विश्वामित्र मुनि के विषय में कहा गया है कि उनके अंदर वो बालक रूपी अमयता थी, मासूमियत, और उनके अंदर वो पारतंत्र्यम था बालक रूपी। पारतंत्र्यम कहते हैं जब बालक माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है तो उस निर्भरता को पारतंत्र्यम कहते हैं। तो क्योंकि विश्वामित्र मुनि अपना पांडित्य, अपना ज्ञान को त्याग कर अब एक बालक के समान समक्ष उनके आए हैं, तो ज्ञान और पांडित्य को त्याग कर बालक बनना और बालक बनकर शरणागत होना, ये विश्वामित्र मुनि अब दर्शा रहे हैं अपने उदाहरण से। इसीलिए इस पहले कांड को बाल कांड कहा गया। तो यदि हमें भी प्रभु रामचंद्र जी का सानिध्य पाना है तो विश्वामित्र मुनि के समान बालक बनना होगा और तब जाकर हम भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का सानिध्य पा पाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि अब बताते हैं कि वो आए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को ले जाने के लिए, सूचना देते हैं दशरथ महाराज को। तो प्रश्न पूछा गया है कि क्यों विश्वामित्र मुनि चाहते थे कि रामचंद्र जी आए। तो विश्वामित्र मुनि ने कारण बताया कि मैं ये सब कुछ यज्ञ कर रहा हूं और ये दो राक्षस हैं। कौन से हैं दो राक्षस जो परेशान किया करते थे? मारीच और सुबाहु, ये दो राक्षस। तो ये जो दो राक्षस हैं ये हर समय यज्ञ में विघ्न डालते हैं, प्रदूषित करते हैं हमारे यज्ञ को। तो विश्वामित्र मुनि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर सारी शक्ति है इनको मारने की, परंतु यज्ञ करते समय ये आकर यज्ञ को प्रदूषित करते हैं, विघ्न डालते हैं, तो उस समय मैं क्रोधित नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं क्रोध में आ जाऊंगा तो वो यज्ञ असफल रहेगा। तो ये सारे ये जो दोनों राक्षस हैं जानते हैं कि यज्ञ के समय मैं क्रोध में नहीं आ सकता और इसीलिए उसी समय आकर वो उसमें बाधा डालते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि राम आए मेरे साथ और मैं जब यज्ञ कर रहा हूं तो इन दोनों का संहार उस समय वो करें। तो अब दशरथ महाराज वो ये सब कुछ सुनते हैं तो उनको थोड़ा आश्चर्य होता है कि यदि आपके अंदर ये सारी शक्तियां हैं तो आप स्वयं उनको किसी और समय क्यों नहीं मारते यज्ञ के अलावा। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि हां विश्वामित्र मुनि वो कर सकते थे, तो विश्वामित्र मुनि क्यों रामचंद्र जी को ही चाहते थे ये कार्य करने के लिए। तो यहां पर वो कारण देते हैं, आचार्य कहते हैं कि दो कारण हैं। एक तो विश्वामित्र मुनि उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि आप चिंता मत करो कि रामचंद्र जी मेरे साथ रहेंगे तो मैं पूरी सुरक्षा दूंगा रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी को पूरी सुरक्षा मुझसे मिलेगी। और उसके साथ वो बोलते हैं कि रामचंद्र जी ये सेवा भी करें, तो वो सेवा भी मांग रहे हैं और सुरक्षा भी दे रहे हैं। तो दशरथ महाराज ने प्रश्न पूछा कि ये दोनों कैसे हो रहा है, यदि आपके अंदर बल है सुरक्षा देने का रामचंद्र जी को तो उसी बल से इन दोनों को मार दो। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि ये दो प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, एक भूमिका निभा रहे हैं आचार्य की और एक भूमिका निभा रहे हैं एक साधक की। और रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि के साथ वो भी दो भूमिका निभा रहे हैं, रामचंद्र जी भूमिका निभा रहे हैं एक शिष्य की और उसके साथ साथ वो भूमिका निभा रहे हैं भगवान की। तो यहां पर देखिए दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे की रक्षा और सेवा करने के लिए भूमिका निभा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि निभा रहे हैं भूमिका आचार्य की, क्यों? क्योंकि एक आचार्य का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों की रक्षा करे। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि मैं रक्षा करूंगा, आचार्य हूं क्योंकि, तो आचार्य का पद लिया ताकि वो सेवा कर सके रक्षा कर रामचंद्र जी की। और उपासक एक साधक बने हैं वो इसलिए कि मेरे अंदर जितने भी गुण हैं वो सब कुछ मैं अर्पित करूंगा इनके चरण कमल पर। तो एक जो साधक होता है, एक जो उपासक होता है, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि जो कुछ उसके पास है, जो कुछ बल या गुण है, वो सब कुछ जो उपास्य हैं उनके शरण में दे दे वो। तो यहां पर दोनों तरीके से, एक आचार्य होने की वजह से और एक उपासक होने की वजह से, वो भगवान की सेवा में ही लग रहे थे। और यहां पर भगवान वो शिष्य होने की वजह से वो उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, और भगवान होने की वजह से अपने भक्त की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। तो दोनों तरीके से वो चाहते थे, रामचंद्र जी और विश्वामित्र मुनि दोनों की इच्छा यही थी एक दूसरे की सेवा हम करें। और दशरथ महाराज अब वो बहुत सुंदर तरीके से एक छोटा सा बहाना, सबसे पहला बहाना वो दे रहे हैं कि क्यों ये जो राम है सक्षम नहीं है ये कार्य करने के लिए। तो कहते हैं, उन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतम अस्य पश्यामि सह राक्षसै। वो कहते हैं तो केवल 16 वर्ष का है, उन षोडश वर्षों में, और वो बहुत ही सुंदर एक गुण बता रहे हैं, एक लक्षण बता रहे हैं भगवान श्री राम का। वो कहते हैं कि ये राजीव लोचन है। राजीव लोचन किसे कहते हैं? जिसके लोचन, जिसकी आंखें राजीव के समान, कमल के समान हो। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि दशरथ महाराज ये संकेत कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि को कि ये राजीव लोचन है राम, और राजीव लोचन होने के कारण राजीव जो होता है, कमल जो होता है, जब सूर्यास्त होता है तो कमल बंद हो जाता है, और जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है। तो ये उदाहरण देकर वो विश्वामित्र मुनि को समझा रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखें कमल के समान हैं तो रात्रि में बंद हो जाएंगी ये आंखें, क्योंकि कमल के समान है, और सूर्य उदय होगा तभी ये आंखें खुलेंगी। परंतु आपके जो दोनों राक्षस हैं ये रात्रि में ही आते हैं, तो क्योंकि राक्षसों का जितना भी बल होता है वो प्रदर्शित करते हैं रात्रि में ही, तो इसीलिए ये अक्षम है, राम सक्षम नहीं है उनका वध करने के लिए, क्योंकि वो रात्रि में आएंगे और ये राजीव लोचन है तो इनकी आंखें रात्रि में बंद होती हैं कमल के समान। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि जब ये सब सुनते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि आपके जो रघुवंश है इसमें एक रीत चली आई है, और वो कौन सी रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रीत आपके रघुवंश में चली आई है, और मैंने बहुत कुछ इसके विषय में सुना है, परंतु देख रहा हूं कि कैसे परंपरा भंग होती है, और ये आपके इस उदाहरण से मैं देख रहा हूं कि ये परंपरा कैसे आप भंग कर रहे हो। ठीक है, आप अपने परिवार में ही मस्त रहो, और आपको अपने उद्धार के विषय में या अन्यों के उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं, तो रहो फिर उसी के। तो थोड़ा क्रोध में व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोला उन्होंने। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जो हैं वो केवल दशरथ महाराज की ही संपत्ति नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि ये संकेत कर रहे थे कि हर एक जीवात्मा का संबंध है प्रभु श्री राम से, और यदि केवल रामचंद्र जी को आप ही अपने घर में बांध कर रखोगे तो जो बाकी जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा इस संसार के, वो कैसे रिश्ता स्थापित करेंगे उनसे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए, उससे पहले प्रभुपाद जी भारत में प्रचार शुरू किए थे, और परिवारों में जाकर, कुछ एक परिवारों में जाकर वो कहते थे आपके चार पुत्र हैं, एक पुत्र मुझे दे दीजिए ताकि मैं ये भगवद गीता का जो प्रचार है ये पूरे विश्व में मैं कर सकूं, क्योंकि मेरी उम्र अब 70 हो गई है। कई घरों में 8 पुत्र होते थे, उनको कहते थे कि केवल एक पुत्र, ये बहुत बड़ी मांग हो जाती है भारत में। जैसे कल कुछ दिन पहले हमने चर्चा की, वो परिवार के, वो भी पाश्चात्य देश में, 14 बच्चे और एक बच्चा ब्रह्मचारी बन गया, तो उनकी माता कहती है वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, अभी बाकी 13 वो क्या कर रहे हैं। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को दर्शा रहे हैं कि दूसरों के उद्धार के लिए आपको ये त्याग करना होगा, और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें क्या समझ में आता है, इस उदाहरण से यह समझ में आता है कि प्रभु रामचंद्र जी वो कृष्ण भावना का प्रतीक हैं, या राम भावना के प्रतीक हैं। तो दशरथ महाराज उस राम भावनामृत को या कृष्ण भावनामृत को वो स्वयं ही आस्वादन करना चाहते थे, और किसी और को नहीं देना चाहते थे उसका आस्वादन करने के लिए। तो जो भक्त होता है भगवान का, उसकी एकमात्र इच्छा क्या होती है कि हां मैं भी आस्वादन कर रहा हूं भगवान कृष्ण की भक्ति, परंतु उससे ज्यादा अधिक आनंद एक भक्त को आता है जब वो किसी और को ये भक्ति का आस्वादन देता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ये इस्कॉन स्थापना होने के पश्चात जब वो भारत आए थे दूसरी या तीसरी बार, तो उनके साथ सारे विदेशी शिष्य आए उनके, और उन्होंने भारत के विषय में बहुत कुछ सुना था, और पाश्चात्य देश में हमने भी देखा वहां जाकर बहुत सी चीजें वो भारत के विषय में सुनते हैं, अच्छी बुरी। तो अच्छी चीजों में एक चीज जो बहुत सुने हैं और अनुभव करना चाहते हैं वो है भारत के आम, क्योंकि वहां पर ये आम वहां पर उपलब्ध नहीं जो भारत में उपलब्ध हैं। तो ये गर्मी का समय था, प्रभुपाद जी को एक टेलीग्राम आया रशिया से कि यहां पर प्रचार के लिए हमने बहुत कुछ आपके लिए साधन किए हैं, आप यदि आ सकते हैं तो। तो तुरंत प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी टिकट निकालो और मैं जाना चाहता हूं वहां प्रचार के लिए। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और हमने सुना है भारत में आम जो है इसी मौसम में आते हैं, तो आम को छोड़कर आप जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहा प्रीचिंग इज द मोस्ट स्वीटेस्ट मैंगो, कि ये जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार है इससे अधिक मधुर आम और कोई नहीं संसार में। तभी सभी भक्त समझ गए कि हम प्रभुपाद जी को आम तरीके से ले रहे थे, कि ये कोई हमारी तरह आम व्यक्ति हैं जो आम से प्रभावित हो जाएंगे और रुक जाएंगे। जैसे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रभुपाद जी के पास आए और वो प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि मैं रोज इतना घंटा इस शहर में जाकर आपकी किताब वितरित करता हूं और पता नहीं अंत समय क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने देखा बहुत से लोग 64 माला कर रहे हैं और इतना अध्ययन कर रहे हैं आपकी पुस्तकों का, परंतु मैं क्योंकि 8 घंटा रोज केवल पुस्तक वितरित करता हूं तो पता नहीं मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा क्या, अंत समय भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इन भक्त से कहा कि क्योंकि तुम रोज इतने घंटे जाकर इन पुस्तकों का वितरण कर रहे हो तो मैं आश्वासन देता हूं कि पुस्तक वितरित करते करते रास्ते में एक दिन कृष्ण स्वयं आएंगे पुस्तक लेने के लिए तुमसे। जैसे लोगों को तुम दिखाते रहोगे कि ये पुस्तक भगवान की है, उसी प्रकार से स्वयं भगवान कृष्ण उन व्यक्तियों में आकर तुमसे पुस्तक लेंगे गीता, और केवल पुस्तक ही नहीं लेंगे तुम्हें भी ले जाएंगे अपने धाम। तो करते रहो ये प्रचार। तो ये प्रभुपाद जी ने आश्वासन दिया और प्रभुपाद जी ने एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि तुम यदि केवल 3 दिन जाओ ये भगवद गीता वितरित करने के लिए, केवल 3 दिन, तो वो 3 दिन की तपस्या, पुस्तक वितरण करने की तपस्या, विश्वामित्र मुनि ने जो 60,000 वर्ष की तपस्या की उससे 60,000 गुना ज्यादा फल मिलेगा तुम्हें केवल 3 दिन ये पुस्तक वितरण करने का, प्रचार करने का वो बता रहे थे। जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक रसोईया होता है जो भोजन बनाता है, एक रसोईया जो है उसको आनंद आता है भोजन पकाने में, जो एक प्रामाणिक रसोईया होता है उसे भोजन पकाने में ज्यादा आनंद आता है खाने से ज्यादा, और यदि वो और भी प्रामाणिक रसोईया हो तो पकाने के बाद उसे वितरण करने में उसे और ज्यादा आनंद आता है। कई बार देखा जाता है कि कोई होते हैं जो कोई विशेष पदार्थ उन्होंने बनाया है तो वो स्वयं उसको बांटना चाहते हैं। हमारे मंदिर में एक थे तो जब भी कुछ वो स्पेशल कुछ बनाते थे, विशेष कुछ बनाते थे, तो वो स्वयं बाल्टी लेकर सबको बांटते थे और पूछते थे अच्छा लगा कैसा लगा, और जब लोग अच्छा कहते थे तो इतना आनंद आता था, और कई बार वो बांटते बांटते खत्म हो जाता था वो कुछ जो स्पेशल आइटम, तो बोलते आपने आपके लिए नहीं रखा, नहीं बस आपको खिलाकर संतुष्टि हो गई। कई बार तो हम संतुष्टि पाते हैं क्योंकि अपना प्लेट बना रहता है इसलिए। जैसे हमारे भक्त बता रहे थे कि जब वो नए नए आए थे मंदिर में तो उनको ये सेवा दी जाती थी कि जैसे ही संडे फीस्ट हुआ कीर्तन हुआ तो नीचे आकर बांटना शुरू करो। तो सभी जो भी अलग अलग उत्सव होते थे, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, इनमें जो भी फीस्ट बांटा जाता था तो इनको लगाते थे सेवा के लिए। तो कई बार देखते थे कि इतने लोग आ गए और प्रसाद बनाया है कम लोगों के लिए और अभी इनको खड़ा कर दिया उसे बांटने के लिए, तो थोड़ा मन में लगता था अरे ये कम पड़ जाएगा, ये कितना लंबा लाइन है और ये कब खत्म होगा, उसके ये भी खत्म हो रहा है। तो वो कह रहे थे कि जब शुरू में सब जो बर्तन भरे हुए रहते थे तो अच्छे से डालते थे सबको, परंतु देखा कि लाइन अब इतनी है और बर्तन में इतना ही प्रसाद है तो सब्जी जो है वो चटनी की तरह डालना शुरू करते थे, इतना इतना सा। तो फिर उनको बताया जाता ठीक है आप अपना भर के प्लेट बना लो, तो उनके लिए भर के प्लेट बनाकर साइड में रख दिया जाता था और उनको कहते थे आपका प्लेट यहां रखा फिर भर भर के। तो फिर लोग अरे हमको इतना नहीं, नहीं नहीं खाइए खाइए, वैष्णव सेवा। तो एक जो रसोईया होता है वो बहुत आनंद लेता है बांटने में, उसी प्रकार से एक प्रचारक की तुलना उससे की गई है कि एक प्रचारक आस्वादन तो करता है भगवान की भक्ति का, परंतु उसे बांटने में ज्यादा आनंद लेता है वो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य का नाम रखा भवानंद। तो वो बहुत अचरज में पड़ गए कि भव का अर्थ होता है ये संसार और भवानंद का अर्थ हुआ जो इस संसार में आनंद ले। भाई ये क्या नाम हुआ, उसका मैं दास, भाई वो तो मैं करते आ रहा हूं, पहले वही नाम था मेरा भक्ति में आने से पहले मेरे कार्यों के कार्यों को देखते हुए। तो प्रभुपाद जी के पास गए तो प्रभुपाद को पूछा कि ये भवानंद का अर्थ क्या हुआ, तो प्रभुपाद जी ने कहा भवानंद का अर्थ है कि इस भव में एक ही आनंद है इस संसार में और वो है कृष्ण भक्ति का प्रचार, यही एकमात्र आनंद है इस कलयुग में इस संसार में। इसीलिए एक बहुत सुंदर तुलना की गई है प्रचारक की तुलना, प्रचारक की तुलना की गई है होटल के वेटर से। जैसे होटल में एक वेटर होता है तो जो वेटर होता है वो कुछ पकाता नहीं है, जो कुछ अंदर पकाया हुआ है उसी को लाकर वो कस्टमर को देता है। तो जो अंदर जो रसोईया पका रहा है सब कुछ उसे पता नहीं कि बाहर कितने कस्टमर बैठे हैं, जो भी ऑर्डर आया ऐसा ही होता है, जो भी ऑर्डर आया वो बना बनाकर राकर लगकर दे रहा है और जो रसोईया है वो स्वयं का कुछ नहीं बना रहा वहां पर, उसे जो मालिक देता है वही वो बनाता है। मालिक जो कुछ सामग्री लाकर देगा वही वो रसोईया बनाएगा और जो रसोईया बनाएगा वही वो वेटर लाकर ग्राहकों को देगा। तो प्रचारक की तुलना वेटर से की गई है और जो रसोईया हैं उनकी तुलना की गई है हमारे आचार्यों से, जिन्होंने सामग्री ली कृष्ण से, जो मालिक हैं। तो उन्होंने सामग्री ली सब कुछ कृष्ण से और उसे इतनी अच्छी तरीके से पकाया है, इतना स्वादिष्ट पकाया है कि हमें क्या करना है, जो वेटर का काम है केवल उसे लाकर ग्राहकों को ठीक से देना है। बीच में वो रसोई घर से टेबल के बीच में गड़बड़ नहीं करना, ना तो उसमें से कुछ निकालना ना उसमें कुछ डालना, एज इट इज। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एज इट इज जो आचार्यों ने पकाकर दिया उसे एज इट इज लाकर सबको दिया, और जब एज इट इज लाकर देते हैं तब लोग संतुष्ट होते हैं। तो एक प्रचारक की तुलना उस वेटर से की गई। और देखिए ये नाम भी अच्छा दिया गया है, अंग्रेजी नाम वेटर, वेटर का अर्थ क्या है, जो वेट करे। तो एक प्रचारक को बहुत वेट करना पड़ता है क्योंकि जो ग्राहक हैं इस कलयुग के वो इतने उत्सुक नहीं है, तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है एक प्रचारक को। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते थे कि एक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए एक व्यक्ति को कितना लीटर, सैकड़ों लीटर खून बहाना पड़ता है, खून पसीना एक प्रचारक को, केवल एक चीज समझाने के लिए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये एक चीज समझाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि प्रभुपाद जी अंतिम क्षण तक वो प्रचार कर रहे थे वृंदावन में 1977 तक, वहां पर अब वो लेटे हुए हैं और बस अब कुछ क्षण बाकी रह गए उनके जीने के, तभी भी डिक्टाफोन पे वो ट्रांसलेशन कर रहे थे भागवत का। एक एक शब्द 5-5 मिनट बाद निकल रहा था उनके मुख से, और एक भक्त लेकर वो डिक्टाफोन लेकर वहां पर खड़ा रहता था, और प्रभुपाद जी उस अवस्था में भी पुस्तकों का अनुवाद कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि मेरा जीवन अर्जुन के समान है, जैसे अर्जुन भगवान के लिए लड़ रहे थे उसी प्रकार से मुझे लड़ना है ये प्रचार कार्य में, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा यदि प्रचार करते करते मैं अपना शरीर त्यागूं। ये होते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त प्रचार में जब लगे रहते हैं, क्योंकि उनको उनमें इतना आनंद मिलता है जब वो देखते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, वासुदेव दत्त चैतन्य चरितामृत उनके विषय में हम पढ़ते हैं कि ये सब कोई कह रहे हैं कि सभी चाहे भगवत धाम चले जाएं, हम रुकने के लिए यहां पर तैयार हैं। केवल यहां पर नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जितने भी पाप हैं इन सब बद्ध जीवात्माओं के इस भौतिक संसार में, वो सारे पाप मुझे दे दो, मैं नर्क में जाने के लिए तैयार हूं। यदि एक व्यक्ति नर्क में जाएगा और ये सब आपके धाम में जाएंगे तो इससे अच्छा और क्या होगा। ये होती है एक प्रचारक की धारणा। तो विश्वामित्र मुनि यही समझा रहे हैं दशरथ महाराज को कि आप उस प्रकार के प्रचारक बनिए कि आपको मिल गए भगवान श्री राम, अब बांटिए इनको। तो जब विश्वामित्र मुनि थोड़े क्रोध अवस्था में कहते हैं उन्हें, तो वशिष्ठ मुनि आकर दशरथ महाराज को समझाते हैं, और वो समझाते हैं कि देखिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं विश्वामित्र मुनि को बहुत अच्छी तरीके से। वशिष्ठ मुनि बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, उसका इतिहास है। तो वो कहते हैं कि देखो विश्वामित्र मुनि को स्वयं शिवजी ने सारे अस्त्र शस्त्र दिए हैं, तो रामचंद्र जी की रक्षा के विषय में आप चिंता मत कीजिए। सारी रक्षा, ये सारे अस्त्र शस्त्र देने वाले हैं रामचंद्र जी को, क्योंकि यहां पर विश्वामित्र मुनि का रामायण में केवल उतना ही उल्लेख है। अब ये ले जाने वाले हैं राम को, उसके बाद विश्वामित्र मुनि हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं और वो भगवत धाम जाते हैं वहां से। रामायण में केवल इतना ही उनका अभिनय है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं दशरथ महाराज से कि आप भेज दो रामचंद्र जी को, उल्टा रामचंद्र जी ये सारे शिवजी के जो दिए गए अस्त्र शस्त्र हैं लेकर आएंगे। जैसे पिताजी खुश होता है जब पुत्र जाता है विदेश में डिग्री प्राप्त करने के लिए, तो वशिष्ठ मुनि यही कह रहे हैं कि और डिग्री प्राप्त करके आएंगे रामचंद्र जी, तो भेजो विश्वामित्र मुनि के यूनिवर्सिटी में, और वहां पर और डिग्रियां मिलेंगी और अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, तो और इनका गुणगान होगा और इनकी ख्याति बढ़ेगी। तो अब दशरथ महाराज वो राजी हो जाते हैं रामचंद्र जी को भेजने के लिए। और यहां पर देखिए विश्वामित्र मुनि केवल राम को ही मांगने आए थे, लक्ष्मण को नहीं मांगा था उन्होंने, परंतु अब दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हो गए विश्वामित्र मुनि से कि उन्होंने एक्स्ट्रा बोनस लक्ष्मण को भी ले जाओ तो लक्ष्मण को भी भेज दिया। हालांकि विश्वामित्र मुनि केवल राम को ही मांगे थे, तो अब लक्ष्मण को भी भेज दिया। और यहां पर अब वो निकलते हैं वहां से चलते हुए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि कोई कार वार या बड़ी गाड़ी नहीं लेकर आए थे, वो तो विरक्त साधु, तो सब चलकर ही जाना है। तो यहां पर अब चलना प्रारंभ किया तीनों ने, तो रामायण में वर्णन आता है कि तीनों इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे मानो कोई बहुत विशाल भुजंग कोबरा भुजंग कहते हैं उसे, कोबरा को क्या कहते हैं? नाग, नाग कहते हैं। तो ऐसा नाग जिसके तीन सर हो, ऐसे तीनों लग रहे थे विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण उनके बगल में, इस प्रकार से चलते हुए। और जब वो सरयू नदी के दक्षिण तट पर आए तो वहां पर विश्वामित्र मुनि देखते हैं कि ये दोनों थक गए हैं चलते चलते, क्योंकि इतना कभी चले नहीं। अरे भाई वो तो राजसी ठाट बाट में पैदा हुए तो इतना कभी चले नहीं, तो अब थक गए चलते चलते। तो विश्वामित्र मुनि को थोड़ी दया आई, भगवान के ऊपर दया कर रहा है कोई तो विश्वामित्र मुनि को थोड़ी दया आई, तो उन्होंने रामचंद्र जी को मंत्र औषधि दी। उनकी औषधि भी सब मंत्रों में ही होती थी। तो विश्वामित्र मुनि मंत्र औषधि दे रहे हैं अब रामचंद्र जी को, बल और अतिबल, ये मंत्रों की औषधि वो देते हैं रामचंद्र जी को। और जैसे ही ये मंत्र में इतनी शक्ति थी कि जैसे ही कोई इसका उच्चारण करे तो उच्चारण करने मात्र से जितनी भूख प्यास और थकान है सब चली जाती, केवल ये मंत्रों का उच्चारण करने से। बल और अतिबल के मंत्र हैं ये। तो ये विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को देते हैं। तो रामचंद्र जी देखते हैं कि तो मेरा तो सारे, मेरी तो सारी थकान चली गई, परंतु तो लक्ष्मण वो तो अभी भी वैसे ही है। तो फिर रामचंद्र जी वो परंपरा में दीक्षा देते हैं उस मंत्र की लक्ष्मण को। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि लक्ष्मण जो कि उनके भ्राता हैं, जो कि उनके दास हैं, अब शिष्य बन गए। तो ये तीन गुण लक्ष्मण के बताए गए हैं, भ्राता, दास, शिष्य, कि अब वो शिष्य बन गए, क्योंकि रामचंद्र जी ने ये मंत्र, जैसे गुरु दीक्षा का मंत्र देता है, तो रामचंद्र जी ये मंत्र दे रहे हैं लक्ष्मण को अति बल और बल का, और उस प्रकार से लक्ष्मण को अपना शिष्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और आगे जब सरयू के तट पर, दक्षिण तट पर ये थके हुए वहां पर, तो विश्वामित्र मुनि, अब संध्या का समय हो गया, रात्रि आ रही है, तो उन्हें कहा कि यहीं पर विश्राम करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि अब थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि भाई केवल यहां पर ही सोना होगा इन्हें, नदी के तट पर, रेती पर जो ये सोते थे, मखमल के बिछौनों पर, तो यहां पर इन्हें सोना होगा। तो स्वयं विश्वामित्र मुनि एक घास का एक बिस्तर बनाते हैं, एक घास का बिस्तर बनाते हैं तृण शयने, और उनके ऊपर राम और लक्ष्मण को सुलाते हैं। और सुबह का समय, अब इन्हें तो आदत नहीं है जल्दी उठने की, और इन्हें आवश्यकता भी क्या है जल्दी उठने की, हालांकि हमारे लिए हमसे पहले मंदिरों में उठ जाते हैं भगवान, इस्कॉन के मंदिरों में भक्तों से पहले भगवान उठते हैं, क्यों? अपनी कृपा बांटने के लिए। तो यहां पर स्वयं भगवान है, वो उनको क्या आवश्यकता है जल्दी उठकर कोई मंगल आरती में जाने की, वो स्वयं मंगल के भवन है, वो कौन सी आरती में जाकर अपने आप को और मंगल बनाएंगे। तो वो सोए थे और सूर्य उग रहा था। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि अब दोनों को लेटे हुए देख रहे हैं, विशेष रूप से रामचंद्र जी को लेटे हुए देख रहे हैं। तो आचार्य बताते हैं कि ये विश्वामित्र मुनि एक ही मुनि थे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि रामचंद्र जी को सोए हुए ये उनकी छवि देखे, और किसी मुनि को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, केवल कौशल्या को और विश्वामित्र मुनि को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए विश्वामित्र मुनि बहुत सुंदर तरीके से गुणगान कर रहे हैं, उठा रहे हैं अब रामचंद्र जी को। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर सारदुल्य कर्तव्यम दैव माहनिकम। इसी प्रकार से भगवान श्री बालाजी को उठाया जाता है तिरुपति में। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नार शारदुल्य। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि वो सबसे पहले गुणगान कर रहे हैं कौशल्या का। जब रामचंद्र जी को सोए हुए देखे हैं सुबह अब, तो कौशल्या का गुणगान कर रहे हैं कि ये कौशल्या कितनी सौभाग्यशाली स्त्री है कि वो रामचंद्र जी की ये छवि रोज देखती थी। और इसलिए गुणगान कर रहे हैं कि जब मैं रामचंद्र जी को मांगने गया तो कौशल्या ने बिल्कुल भी कुछ कहा नहीं। हालांकि दशरथ महाराज ने बहुत बड़ा सीन खड़ा कर दिया था, परंतु कौशल्या ने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। तो गुणगान कर रहे कौशल्या सुप्रजा, वो कौशल्या जिनसे जन्मे हैं ये प्रभु रामचंद्र जी। राम पूर्व संध्या प्रवर्तते, और वो यहां पर बहुत सुंदर शब्द उपयोग में ला रहे हैं पूर्व संध्या। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कौशल्या ने उत्पन्न किया राम को, उसी प्रकार से पूर्व संध्या पूर्वी दिशा उत्पन्न करती है सूर्य को। पूर्व से सूर्य उगता है, तो वो माता हुई, पूर्व की दिशा माता हुई सूर्य की, जैसे कौशल्या माता हुई राम की। कौशल्या सुप्रजा, राम पूर्व संध्या, वो तुलना कर रहे हैं दोनों की। परंतु यहां पर वो कहते हैं कि ये जो सूर्य उगता है रोज, ये जो सूर्य उत्पन्न होता है पूर्व संध्या से, ये हालांकि अंधेरे को दूर करता है, अंधेरे को भगाता है, परंतु ये बाहरी अंधेरे को भगाता है। परंतु ये जो सूर्य उत्पन्न हुआ है कौशल्या के गर्भ से, ये सूर्य जब उठेंगे तो ये कौन से अंधेरे को भगाएंगे? जो अंदर का अंधेरा है, सबके हृदय का जो अंधेरा है, उस अंधेरे को भगाने के लिए इन्हें उठना है। और इसीलिए उनको कहते हैं नार शार्दुल्य, कि आप नरों में शेर के समान हैं, शार्दुल के समान हैं। इसलिए हे राम उत्तिष्ट उत्तिष्ट, आप उठिए, क्योंकि कर्तव्यम दैवम आहनिकम, क्योंकि आप प्रकट हुए हैं मनुष्य धर्म के कर्तव्य को पूरा करने के लिए। आप अभी अनंत शेष पर लेटे हुए नहीं है, वहां पर तो कितने भी समय तक आप लेट सकते हैं अपने धाम में, परंतु यहां पर आप आए हैं आपके कर्तव्य को पूरा करने के लिए। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं केवल उठाऊं, और उसके पश्चात जो अंधेरा है सबके हृदय में, उस अंधेरे को आप दूर कीजिए। इस सूर्य को वो उठा रहे हैं, इस सूर्य का वो उदय करने वाले हैं अब। और फिर भगवान उठते हैं और वहां से फिर वो आगे प्रारंभ करते हैं विश्वामित्र मुनि के आश्रम की तरफ, जहां पर अब वो वध करेंगे ताटका का, ताटका और उसके आगे मारीच और सुबाहु, और इसकी चर्चा हम करेंगे कल। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।